समय सार लेक्चर नंबर 760 ओ नमः सिद्धे द्वारा कथित समय सार जो है उस समय सार के हम गाथा नंबर 373 से 382 को देख चुके हैं। उसके बाद का जो कलश 222 नंबर का वह भी हो चुका है। आज हम 223 नंबर का कलश देखने जा रहे हैं। हम पृष्ठ क्रमांक 38 पर आएंगे।
देखो इसमें तीसरी लाइन में करेक्शन है, दूरा रूढ़ चरित्र वैभव, उसके बाद ब लिखना, बलात् चंचत चिदर्चिर मईम, ब लिखना वहाँ पर। हम पृष्ठ संख्या 38 पर आते हैं, वहाँ जो श्लोक लिखा है तीसरी लाइन में, वैभव के बाद ब अक्षर लिखना,
बलात् बलात् होता है,
तो का च हुआ ना बलात्, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे हाँ तो वो ब अगर नहीं पढ़ेंगे तो
वो राग जो श्लोकार्थ हम पढ़ हाँ। देखें उसमें जो इनटू ब्रैकेट में संस्कृत लिखा है
बलात्,
उसमें वैभव बलात् लिखा है, वह ब कर देना उधर, फिर पढ़ते समय ख्याल में आएगा आपको। अभी हम शार्दूल विक्रीडित को देखेंगे।
राग द्वेष विभाव मुक्त महसो नित्यं स्वभाव स्पृशा पूर्वागामी समस्त कर्म विकला भिन्नास्तदात्मोदया दूरारूढ़ चरित्र वैभव बलात् चंचन चिदर्चिर्मयीम् विन्दन्ति स्वरसाभिषिक्त भुवनाम् ज्ञानस्य संचेतनाम्।
श्लोकार देखते हैं नीचे, राग द्वेष विभाव मुक्त महसः, जेमनु तेज राग द्वेष रूपी रूप विभाव थी रहित छे, राग द्वेष विभाव मुक्त नित्य स्वभाव स्पृश्य जे वो सदा पोताना चैतन्य चमत्कार मात्र स्वभाव ने स्पर्शनारा छे, पूर्व आगामी समस्त कर्म विकलाहा जे वो भूतकालना तेमज भविष्यकालना समस्त कर्म थी रहित छे, अने तदात्व उदयात भिन्नाहा जे वो वर्तमान कालना कर्मोदय थी भिन्न छे। ये किसका वर्णन चल रहा है वो आपको पता चल गया होगा। तो दूर आरूढ़ चरित्र वैभव बलात् ज्ञानस्य संचेतनाम विंदंती ते वो, एटले एवा ज्ञानियों, ये ज्ञानियों की बात चल रही है। क्या क्या देखा हमने, राग द्वेष विभाव थी रहित छे, सदैव अपने चैतन्य चमत्कार मात्र स्वभाव को स्पर्शने वाले है, भूतकालीन भविष्यकालीन कर्मों से तो रहित है ही है, वर्तमान कर्मोदय से भी भिन्न है। ऐसे जो जीव है एवं ज्ञानी वो अति प्रबल चारित्रना वैभवना बल थी ज्ञानी संचेतना ने अनुभवे छे। ज्ञानी संचेत ज्ञान चेतना कह रहे ना हम, ज्ञान का संचेतन सम्यक चेतना उसका अनुभवन। चंचत चित अर्चिर मयिम के जे ज्ञान चेतना चमकती चैतन्य ज्योतिमय छे। अर्ची यानी ज्योति, चित अर्ची चैतन्य ज्योति, अने स्वरस अभिषिक्त भुवनाम जेणे जेण हुआ है, जेणे निज रस थी स्वरस पोताना ज्ञान रूपी रस थी समस्त लोक ने सींचो छे, अभिषिक्त किया है ने भुवन को, भुवनाम यानि अनेक भुवन तीनों ही लोक को या समस्त विश्व को समस्त लोक को अपने निज रस थी सींचो छे ने जान लिया है। देखो भावार्थ देखते हैं, जेमने राग द्वेष गया पोताना चैतन्य स्वभावनो अंगीकार थयो अने अतीत अनागत तथा वर्तमान कर्मनु ममत्व गयू एवा ज्ञानियो सर्व परद्रव्य थी जुदा थईने दूर आरूढ़ लिखा ना चारित्र अंगीकार करे छे ते चारित्रना बल थी कर्मचेतना अने कर्म फल चेतना थी जुदी जे पोतानी चैतन्यना परिणमन स्वरूप ज्ञान चेतना तेनु अनुभवन करे छे। एने ज्ञानी अपने ज्ञान चेतना का ही अनुभव करते हैं, कर्मों वो नहीं है ऐसी बात नहीं, उनसे वो सदैव दूर ही है यानी उनसे भिन्न ही है, उनका भिन्न अनुभवन भी चल रहा है, उनके प्रति कोई उनका ममत्व भाव अपनत्व भाव नहीं रहा। अही तात्पर्य आम जाणवू, जीव पहला तो कर्मचेतना अने कर्मफल चेतना थी भिन्न पोतानी ज्ञान चेतनानु स्वरूप आगम प्रमाण अनुमान प्रमाण अने स्वसंवेदन प्रमाण थी जाने छे। क्या कहते हैं ये प्रमाण, आगम को भी प्रमाण कहा है, प्रमाण जो भेद बताए है ज्ञान के भेद है, प्रमाणीय ज्ञान के भेद है परोक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। मालूम है परोक्ष प्रमाण के भेद कौन कौन से है? हाँ, स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क हाँ अनुमान और आगम। हाँ आगम को मत भूलना। तो ये प्रमाण है, तो पहले में पहले अपने जो ज्ञान चेतना है सभी प्रकार के जो हमें जो अपने स्वरूप का पता चलता है तो पहले देशना के द्वारा हो जाता है। तो यहाँ जो आगम प्रमाण है उसको पहले जानना, उससे उसके द्वारा अपने स्वरूप कैसा है उसकी बात हम समझेंगे। क्या कहते हैं कि जीव पहला तो कर्म चेतना ने कर्मफल चेतना थी भिन्न पोतानी ज्ञान चेतना नु स्वरूप आगम प्रमाण यानी आगम से जानेंगे, आगम प्रमाण है। फिर कहते हैं अनुमान प्रमाण, अनुमान के अनुमान भी प्रमाण है, ये प्रमाण ज्ञान का भेद है। अने स्वसंवेदन प्रमाण थी जाने छे, पहले आगम से नक्की करेंगे फिर अनुमान यानी उसके पर तर्क के द्वारा ये ऐसा ही है क्या नहीं है, ये युक्ति, युक्ति का अर्थ होता है तर्क अनुमान आदि के द्वारा वो नक्की करेगा नहीं ऐसा ही होगा। और फिर स्वसन्मुखता में अपने स्वानुभव से यानी जिसको स्वानुभव प्रमाण कहा है, अपने आत्मा का अनुभव जहाँ हो जाएगा, आत्मा की अनुभूति होती है तो कहते जाने छे। तो आगम से जानने को भी जानना कहते हैं, अनुमान से नक्की करने को भी जानना कहेंगे, और उसको सम्यक ज्ञान कब नाम प्राप्त होगा, स्वानुभव से प्रमाण करेगा तब, उसके पहले की ये प्रोसेस है। अने तेनु श्रद्धान दृढ़ करे छे, ए तो अविरत देशविरत अने प्रमत्त अवस्था मां पूर्ण थाय छे, यानी तीनों ही भूमिका में ये हो जाता है। અને જ્યારે અપ્રમત્તા અવસ્થા થાય છે, ઉપર બતા ને દૂર આડૂર આરૂઢ ચરિત્ર વૈભવ બોલા પ્રબળ ચારિત્રના વૈભવથી, તો જ્યારે અપ્રમત્ત અવસ્થા થાય છે ત્યારે જીવ પોતાના સ્વરૂપનું જ ધ્યાન કરે છે, અને ઉસ સમય તો જ્ઞાન ચેતના રૂપી અનુભવ ચાલ રહા હૈ, વહા ના કોઈ વિકલ્પોં કી બાત હૈ, વહા કોઈ જરૂરત હી નહીં ને, અપને આપ કો જ્ઞાન સ્વરૂપ અનુભવ ચાલ રહા હૈ, વો શરીર હું કે નહીં, રાગ હું કે નહીં, તો એ તો હું કે નહીં કો કિસી સવાલ હી નહીં વહા ઉઠતા, મેં જ્ઞાન સ્વરૂપ હું એસા અનુભવ ચલતા હૈ, તો અન્ય હૈ કે નહીં ઉસકે તરફ ભી ધ્યાન નહીં ઉસકા, યાને વહા શરીર ભી હૈ કે નહીં એસે કોઈ વહા અનુભૂતિ નહીં ચલ રહી હૈ, વો જ્ઞાન માત્ર અપને કો અનુભવ હો રહા હૈ. જ્યારે અપ્રમત્ત અવસ્થા થાય છે ત્યારે જીવ પોતાના સ્વરૂપનું જ ધ્યાન કરે છે, તે વખતે જે જ્ઞાન ચેતનાનું તેને પ્રથમ શ્રદ્ધાન કર્યું હતું તેમાં તે લીન થાય છે, અને શ્રેણી ચડી કેવળ જ્ઞાન ઉપજાવી સાક્ષાત જ્ઞાન ચેતના રૂપ થાય છે. સાક્ષાત જ્ઞાન ચેતના એને એવું તો ઉસકો સર્વ પ્રત્યક્ષ હો જાતા હૈ. નીચે લિખા ઉસકા જો સાઇન કી હૈ ફૂટ નોટ મેં, કેવળ જ્ઞાની જીવને સાક્ષાત જ્ઞાન ચેતના હોય છે. કેવળ જ્ઞાન થયા પહેલા પણ નિર્વિકલ્પ અનુભવ વખતે જીવને ઉપયોગાત્મક જ્ઞાન ચેતના હોય છે. જ્ઞાન ચેતનાના ઉપયોગાત્મકપણાને મુખ્ય ન કરીએ તો સમ્યક દ્રષ્ટિને જ્ઞાન ચેતના નિરંતર હોય છે. ક્યા કહેતે હૈ ઉપયોગાત્મકપણાને નિત્ય ન ઉસકો ગૌણ કરેંગે તો એને કા જીસકો હમ કહેતે ને અનુભૂતિ ઉનકે ચલતી હૈ, શુદ્ધ ઉપયોગ ભલે નહીં હો તો હા ઉનકા જો પરિણતિ ઉસ રૂપ ચલ રહી હૈ તો હર સમય ઉસકે જ્ઞાન ચેતના ચલ રહી હૈ. કર્મ ચેતના અને કર્મફળ ચેતના નથી હોતી કિસકે બાદ ચલે જ્ઞાની કે, કારણ કે તેને નિરંતર જ્ઞાનના સ્વામિત્વ ભાવે પરિણમન હોય છે. મેં જ્ઞાન સ્વરૂપ હું એસે જ્ઞાન મેં હી ઉસકા અહમ ભાવ હૈ, ઉસ રૂપ હી મેં હું, તો વહાં ભલે રાગ હો રહા હૈ ઉસકો જાનતે હૈ પરંતુ ઉસમે અપનત્વ નહીં રહા સ્વામિત્વ નહીં રહા, તો ઉસકે કર્મ ચેતના નહીં ઓર કર્મફલ ચેતના ભી નહીં એસા કહેંગે. કર્મના અને કર્મફળ ના સ્વામિત્વ ભાવે પરિણમન નથી હોતું, યહાં કર્મ જો વાત લી હૈ વો ભાવ કર્મ કી બાત લેના, યહાં રાગ દ્વેષ કી બાત હૈ, અને કર્મ કા સ્વામિત્વ નહીં અને રાગ દ્વેષ કા ઉસકો સ્વામિત્વ નહીં હૈ. ઓર કર્મ ફલ મેં કિસકો લેના હૈ, સુખ દુઃખ રૂપ જો વહા અનુભવન કરના, હા ભલે વો પર્યાય મેં દુઃખ રૂપ ચલ ભી રહા હો પરિણમન, ફિર ભી ઉસસે અપના ભિન્ન અસ્તિત્વ ઉનકે હર સમય ખ્યાલ મેં હૈ, ઉસકા અનુભવ ભી ચલતા હૈ. હમ ઇસ પર સ્વામીજી કે જો પ્રવચન હુએ હૈ ઉસકી બાત દેખેંગે અભી.
देखो हम पृष्ठ क्रमांक अभी आएंगे 59 पर, इसके पहले हम थोड़ा सा इसको देखेंगे कि ये जो तीन बताए प्रकार ज्ञान चेतना आदि वो कौन से तीन है, नाम याद है
चेतना के? तीन प्रकार
के अभी हमने तीन भेद देखे.
तीन प्रकार की चेतना कौन कौन सी है?
હા બહુ અચ્છા આપને કહા, તીન બાતે હમને દેખી, એ કર્મ ચેતના, કર્મ ફલ ચેતના ઓર જ્ઞાન ચેતના. એ પહેલે મેં પહેલે એક વાત તો ધ્યાન રખના હી ચાહીએ, એ ચેતના કે તીન ભેદ દિખાયા હૈ. યહાં કર્મ ચેતના કહેને સે કર્મ કા કોઈ સંબંધ નહીં હૈ, એ વાત હમે બિલકુલ ધ્યાન મેં રખની ચાહીએ. और ये कह रहे हैं कि ये भाव कर्म की बात चल रही काय की है कि मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं कषायी हूं, मैं हसमुख हूं आदि कषाय रूप ही अपने को अनुभव करना वह कर्म चेतना हो गए. ख्याल में आया? अब आगे कहते हैं कि कर्म फल चेतना यानी जो हमें पर पदार्थों से स्वयं को सुखी मानना, सुखी रूप अनुभव करना, राग करके क्रोध करके भी मैं सुखी हूँ ऐसा मानना या दुखी मानना, ये कर्म फल चेतना है। उस रूप अपने को अनुभव करना, और ज्ञान चेतना का अर्थ है कि स्वयं को ज्ञान स्वरूप अनुभव करना। ये तीनों ही चेतना के भेद हैं। ये जब तक हम सही रूप से नहीं समझेंगे तो वहाँ जो भावार्थ में जो बात बताई है वो हमारे ज्ञान में आने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ये नाम तो हम बार बार शास्त्र में पढ़ते हैं और बार बार भूल भी जाते हैं, ख्याल में है ना। तो देखो अभी यहाँ ऐसा कहते हैं, अपेक्षाएं दो तीन हैं, इसमें से हम एक आध दूसरी अपेक्षा देखते हैं। यहाँ तो एक अपेक्षा ऐसी है कि सम्यक दृष्टि के ज्ञान चेतना ही है, अन्य दो चेतनाएं नहीं है। कहीं ऐसा भी कहते हैं सम्यक दृष्टि के ज्ञान चेतना भी है, कर्म चेतना भी है और कर्म फल चेतना भी है, क्योंकि अभी परिपूर्ण वीतराग वो हुए नहीं है, इस अपेक्षा से उसका ऐसा भी कथन आता है। तो जहां जो कथन है वो हम देखेंगे। यहां देखो फुटनोट में क्या कहा, केवल ज्ञानी जीव ने साक्षात ज्ञान चेतना हो इसे, यानी उनको ज्ञान चेतना के अलावा अन्य कोई भी चेतना नहीं होती, साक्षात यानी बस अभी दूसरा कोई गड़बड़ नहीं चाहिए बीच में। केवल ज्ञान थया पहला पन, अभी यहाँ क्या कहा, केवल ज्ञान जब हुआ नहीं है तब वो कौन सी अवस्था में है। हाँ सर, हाँ बोलो, हाँ हाँ, अरे मुनि अवस्था में, बराबर है आपका, अल्पज्ञ है सब है, लेकिन अपने को क्या देखना है, केवल ज्ञान जीव ने, केवल ज्ञानी अने केवल ज्ञान थया पहला पन निर्विकल्प अनुभव वक्ते, क्या कौन सी बात करी, जब शुद्ध उपयोग है, जीव ने उपयोगात्मक ज्ञान चेतना हुई छे, ज्ञान चेतना ना उपयोगात्मक पना ने मुख्य न करिए, तो अभी कैसा जीव लिया कि उनके कभी कभी उपयोग रूप हो कार्य हो रहा है और कभी कभी उपयोग स्व में नहीं टिक रहा है, तो वह राग रूप परिणमित हो रहे हैं। तो क्या कहा कि सेकंड लाइन पढ़ता हूँ, ज्ञान चेतना ना उपयोगात्मक पना ने, पहले क्या कहा, केवल ज्ञान थया पहला पन निर्विकल्प अनुवक्ते, पन जीव ने उपयोगात्मक ज्ञान चेतना छे, एक एक स्टेप नीचे उतर रहे, अभी कहते कि उपयोगात्मक नहीं है तब इन्हें मुख्य न करिए, तो सम्यक दृष्टि ने ज्ञान चेतना निरंतर होई छे, तो वो कौन सी अपेक्षा है, तो कर्म चेतना अने कर्म फल चेतना होती नहीं, क्योंकि वहां अभी हमने देखा था क्या, तेने निरंतर ज्ञान ना स्वामित्व भावे परिणमन होई छे, कर्मना अने कर्म फलना स्वामित्व भावे परिणमन होतो नहीं। क्या कहना चाहते हैं कि वहां हमने बहुत बार स्वामी जी को कहते हुए सुना है और हमको याद भी है कि ये जो सम्यक दृष्टि होता है तो वह तो जब शुद्धोपयोग में होगा तो ठीक, शुद्धोपयोग नहीं है तब शुद्ध परिणति चालू है, और शुद्ध परिणति वक्त भी उनके राग द्वेष के परिणाम होते हैं, लेकिन वे उनके स्वामी नहीं है, वे उनके कर्ता नहीं है, ज्ञायक है वो, उनके ज्ञान का गेय है, तो उनको वो जो राग द्वेष उठने वाले हैं उनको गौण कर दिया, और उनका स्वयं का मेरा ज्ञान स्वभाव है यह परिणति तो चालू ही है, उसका अनुभव जो शुद्ध परिणति है वो भी चालू है, इसलिए कह रहे हैं तेने निरंतर ज्ञान ना स्वामित्व भावे परिणमन होय छे, राग द्वेष ना स्वामित्व बने होतु नथी, तेथी कहे छे कर्मना ने कर्म फलना स्वामित्व भावे परिणमन नथी होतु। मैंने दो अपेक्षा बताई ना आपको, कहीं कहीं ऐसा भी आपको कथन मिलेगा कि सम्यक दृष्टि को भी कर्म चेतना और कर्म फल चेतना है, क्योंकि जब शुद्ध उपयोग में नहीं है तब जो बाहर आते हैं, लेकिन वो स्वयं को उस रूप अनुभवते नहीं है, लेकिन उनको राग द्वेष हो रहे हैं इस अपेक्षा से उनको ये दोनों भी है ऐसा कहेंगे। अब हम आते हैं 59 पृष्ठ पर। क्या कहा देखो, राग द्वेष विभाव मुक्तम सह जेमनु तेज राग द्वेष रूप विभाव थी रहित छे, यानी उनका जो तेज है उस जीव का वो कैसा है जिसमें राग द्वेष है ही नहीं, बिल्कुल शुद्ध शुद्ध निर्मल निर्मल ऐसा उनका प्रणमन चल रहा है। हाँ सर, बस यानी बड़ा जिसको हम कहते हैं ग्रैंजर, इसमें ट्रांसलेशन नहीं किया, मुक्त महसा तेज तेज किया, महसा का अर्थ तेज किया। नित्यम स्वभाव स्पृश जे वो सदा पोताना चैतन्य चमत्कार मात्र स्वभाव ने स्पर्शनारा छे, ये अपने चैतन्य स्वभाव को चमत्कार मात्र क्यों कहा, क्योंकि इस जीव में ऐसे एक एक असामान्य यानी आउटस्टैंडिंग ऐसे जो गुण हैं उनका परिणमन ऐसा जिसको हम कहेंगे कि हम हाँ जी अद्भुत, हम उसका विचार भी नहीं कर सके सोच भी नहीं सके ऐसी अद्भुत बातें उसमें है, इसलिए वो चमत्कार कहा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं दो मिनट में, जैसा यह जो केवल ज्ञान है वह केवल ज्ञान क्या कर रहा है कि विश्व के सारे द्रव्यों को उनके गुणों को उनके पर्यायों को उनके अविभाग प्रतिच्छेदों को जुदा 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 जान रहा है, कितने समय में, यदि एक समय में, और जिस समय में भेद रूप से जान रहा है उसी समय भेद बिना भी जान रहा है, तो ये कितना कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है ना। तो ऐसे एक एक अद्भुत अद्भुत उसमें रहस्यमय शक्तियां हैं, इसलिए उसको कहा चैतन्य चमत्कार। चमत्कार यानी ऐसे हमारे मराठी में कहावत है क्या चमत्कारी कहे, चमत्कारी बोले तो थोड़ा सा खसकेला है, वो अर्थ नहीं है भाई। हाँ, क्योंकि हर भाषा में अलग अलग होता है ना। ये घास होता है ना, घास मराठी में घास का अर्थ निवाला, यानी हम क्या आप लोग क्या बोलते हैं कोर कोर, तो हिंदी में कोर का अर्थ होता है भाई, सुरिंदर कौर और सुरिंदर सिंह, अपने यहां भी रतन भाई रतन लाल होता है ना, एक ही नाम दोनों का होता है, लाल लाला तो पुरुष और भाई डाला तो भाई मतलब स्त्री, वैसे वहां पर भी सिंह लगाया तो सरदार और कौर लगाया तो सरदारन, ये एक हर जगह प्रत्येक शब्द का जुदा जुदा है अर्थ है। ये हिंदी में घास को कहेंगे वो क्या हे यानी सूखा हुआ घास, ग्रास जिसको हम कहेंगे, अरे हर एक शब्द में ऐसी गड़बड़ी होती है और अलग अलग अर्थ निकलते हैं। अपने को यहाँ क्या देखना है कि ये चैतन्य चमत्कार जो है वो क्यों उस स्वभाव को अनंत सुख एक समय में अनंत वीर एक समय में ऐसा एक एक समय में इतनी अद्भुत शक्तियां इस जीव में है, इसलिए उसको चैतन्य चमत्कार मात्र कहा है। एवा स्वभाव ने स्पर्शनारा छे पूर्व आगामी समस्त कर्म विकला जेवो भूतकारणा तेमज भविष्यकारणा समस्त कर्मति रहित चे विकला कहा, एक जगह वो ज्ञान विदुरा बोधि विदुरा कहा, याद है ऐसे ऐसे शब्द निकालते हैं। गुरुदेव कितनी भी बात ऐसे बताते ना, आ तो आत्मा एवो छे के बीजानो कार्य करवा माटे पंगु छे, पंगु छे यानी सोचे विकल्ला छे ख्याल में है, यानी जो पंगु कैसा होता है कि वो स्वयं का ही चलना कार्य नहीं कर सकता है, दूसरे का कार्य क्या करे। वैसे यहाँ कह रहे हैं कि ये कर्मों से ये विकल हो गए हैं रहित हो गए हैं, तदात्व उदयात भिन्नाः जेवो वर्तमान कालना कर्मोदयति भिन्न छे। भूतकाल के और भविष्यकाल के तो वो रहित है ही है, और जो वर्तमान में जो कर्मों का उदय हो रहा है उसमें अटैच नहीं होते, आकर्षित नहीं होते, उनसे वो भिन्न ही है। दूर आरूढ़ चरित्र वैभव बलात् ज्ञानस्य संचेतनाम विंदंती देवो एटले एवा ज्ञानियो। यो कैसे कैसे ज्ञानी, उनके हमने बात देखी थी, अभी नीचे भी आएगी वो बात। तेवा ज्ञानियो अति प्रबल चारित्रणा वैभवना बल थी ज्ञाननी संचेतना ने अनुभवे छे। संचेतन कहो या अनुभव कहो या ज्ञान कहो, एक ही बात है। संचेतनानी हो, संचेतनानी करना, जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पछी चारित्रणी बात करे छे। जेने सम्यक दर्शन ज्ञान थता ते ज्ञानी थयो, तेने ज्ञान चेतना छे, तेने कर्म चेतना ने कर्मफल चेतना नु स्वामीपणु नथी। इसका अर्थ क्या हो गया, स्वामीपणु नथी अने त्या छे। छे तो स्वामीपणु छे के ना छे एनी बात है ने, होज नहीं तो पछी एने स्वामी नथी एम कहेवामां हूँ, एने उसमें कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। क्या कहा के तेने कर्म चेतना ने कर्मफल चेतना नु स्वामीपणु नथी, छता एनु वेदन तेने गौणपणे होय छे। अगर ऐसा हम नहीं मानेंगे तो उस जीव को तो परिपूर्ण सुखी मानना पड़े। देखो स्वामी जी बहुत बैलेंस बात करेंगे। आई चारित्र माते कर्म चेतना ने कर्मफल चेतना नो अभाव करे छे, कहे छे जेमनु तेज राग द्वेष रो विभाव थी रहित छे, आहा स्वरूपनी उग्र रमणता थई तेने चैतन्य तेज मां राग द्वेष नो अभाव छे। आत्मा अनंत गुण थी शोभायमान शुद्ध चेतना मात्र वस्तु छे, तेनु ज्ञान श्रद्धान प्रकट थाय तेमा अनंत गुणनी व्यक्ततानो अंश अनंतमा भागे प्रकट थाय छे। क्या कहा, देखो अभी हमने देखा ना चैतन्य चमत्कार वाली बात, यहाँ पर भी बता रहे हैं। क्या कहते हैं, आत्मा केवो छे, अनंत गुणती शोभायमान छे, एवं तेनु शुद्ध चेतना मात्र वस्तु छे, तेनु ने ते शुद्ध चेतना मात्र वस्तु छे, तेनु ज्ञान श्रद्धान प्रकट थाय तेमा अनंत गुणनी व्यक्ततानो अंश अनंतमा भागे प्रकट थाय छे। ये जब सम्यक दर्शन होता है तो ऐसा कहते हैं कि सर्व गुणांश ते सम्यक्त्व, जो हर गुण में जो सम्यकपना आया है उनका भी उनको अनुभव होता है, लेकिन जुदा जुदा करके नहीं होगा। उसमें से प्रमुखता तो अतीन्द्रिय आनंद की है, पर इमने शू कहे छे, अनंत गुणनी व्यक्तता नो अंश अनंतमा भागे प्रकट थाय छे। सम्यक दर्शन थता भेगो अतीन्द्रिय आनंद नो स्वाद पण अंशे आवे छे। हवे आवी वात संप्रदाय मां छे ज क्यां भाई, आत्मा मां जेटला गुणो छे ते बधानो एक अंश व्यक्त थाय तेनु नाम सम्यक दर्शन छे। सर्व आया वाह, सर्व गुणांस्ते समकित आम व्याख्या छे। चारित्रमां तो गुणोनी घणी व्यक्तता थाय छे अने केवल ज्ञान थता पूर्ण व्यक्तता थाय छे। समकितमां सर्व गुणोनो एक अंश प्रकट वेदनमां आवे छे, ज्यारे चारित्रमां उग्र स्वसंवेदन होय छे। जो चौथा गुण स्थाने त्रण कषाय बाकी छे, अंशे चारित्र छे, स्वरूपाचरण चारित्र छे, संयम नाम पामे एवी स्थिति त्यान थी। बापा संयम कभी होगा, बहुत अच्छा। छठे सातवें गुणस्थान में जब तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाता है उस समय उस जीव को संयमी कहेंगे, उस जीव को संयत कहेंगे। व्रति कहेंगे तो कह रहे हैं कहाँ गया स्वरूपाचरण चारित्र से संयम नाम पावे तेवी स्थिति त्या नति चौथा कर्ता पांचवा गुणस्थान है व्यक्तता विशेष अंशे छे व्यक्तता ने अनुभवनी व्यक्तता एटले वधारे उग्र अनुभव हो तो एमां वधारे ज्ञान थाय अने मुनिराज ने तो व्यक्तता नो अंश घणो ज वधी गयो होय छे अभी यहां पर देखो चौथे गुणस्थान की बात करी फिर चौथे गुणस्थान के बाद पांचवें गुणस्थान की भी बात की और फिर कहते मुनिराज ने यानी छठे सातवें गुणस्थान वर्ती जो जीव है इनके व्यक्तता नो अंश घणो ज वधी गयो होय छे मुनिराज ने प्रचुर स्वसंवेदन होय छे क्या कहा देखो यहाँ थोड़ा सा हमें समझने के लिए जगह है ऐसा लोगों की जाने दो मेरी मान्यता भी ऐसी ही पहले थी कि जैसा जैसा यह जीव ऊपर ऊपर के गुणस्थान में जाता है तो वह बारंबार अपना स्वरूप का अनुभव करता है और स्वरूप का अनुभव बार बार यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है लेकिन वह स्वरूप में जो गुप्तता होती है स्वरूप में जो रमणता होती है वो ड्यूरेशन उसका अधिक काल नहीं रहता है सुनना हो पहले मैं ऐसा ही मानता था ड्यूरेशन अधिक होवे तो उसका ऊपर ऊपर का गुणस्थान आवेगा तो कहते हैं यहां क्या लिखा देखो मुनिराज ने प्रचुर यानी उसमें हम कहेंगे कि डेप्थ इतनी अधिक होती है स्थिरता इतनी मजबूत होती है पहले तो जरा सा ऐसा मतलब फटक अंदर गया वापस बाहर आया ये तो बोलने की बात है यानी अनुभव करे और झट से छूट जाए अभी वो ऐसा अनुभव करे कि बाजू में से सिंह भी निकल जाए कोई भी मतलब ऐसा संकट आवे फिर भी वो अपने स्वरूप से डिगेंगे नहीं देखो ये बात जब अपने ख्याल में आती है तो ये देखो जब मुनिराज कौन पारसनाथ इनके ऊपर ऐसे ओले शोले पत्थर पानी पड़ते होंगे तब क्या उनको पता नहीं लगता होगा कि भाई ऐसा ऐसा मेरे पे उपसर्ग हो रहा है परंतु स्वरूप में जब लीनता करेंगे तो उसके ऊपर दुर्लक्ष हो जाता है ये स्वरूप में जो अंतरंग में जो प्रचुर स्वसंवेदन है प्रचुर स्वसंवेदन का अर्थ मतलब एकदम जिसको हम कहते हैं ना हाँ जी गाढ़ा जो अनुभव चल रहा है स्ट्रांग जिसको हम कहेंगे क्योंकि देखो भाई अगर हम ऐसे ड्यूरेशन बढ़ते बढ़ते गिनेंगे वो तो कोई भी होगा तो अंतर मुहूर्त से अधिक नहीं होगा और हमने तो देखा है कि छठे गुणस्थान से सातवां गुणस्थान छोटा है सातवें से आठवां छोटा है आठवें से नौवां छोटा है नौवें से दसवां छोटा और दसवें से बारहवां छोटा है ख्याल में आया तो जब ऐसी बात है तो ये इतने सारे में जो कुछ टाइम होगा वो भी अंतर मुहूर्त वाला है और वह जीव केवल ज्ञान की प्राप्ति करेगा तो ये पहला जब आप मेरी भी ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी कि 48 मिनट वाला जो अंतर मुहूर्त है तब तक स्वरूप में स्थिरता चाहिए ये हमने उल्टा उल्टा उसका इन्फरेंस निकालते निकालते ऐसा माना कि वो अरे अधिक 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 अंतरंग है देखो फ्रीक्वेंसी तो बढ़ेगी बार बार अनुभवन का काल तो छोटा छोटा होते जाएगा लेकिन वो स्थिरता जो है वो दृढ़ता जो है कहो या जिसमें सॉलिडनेस जिसको हम कहेंगे वो बढ़ता जाता है वो प्रचुर आनंद की बात ली तो प्रचुर अंतरंग में स्थिरता करना ये बहुत दिन से मेरे समझ में भी नई बात आ रही थी लेकिन बार बार उसको जब हम पढ़ेंगे तो ये मैं जो कह रहा हूं वो आस्पेक्ट स्वामी जी को बताना था देखो क्योंकि अभी कर्णानियोग हम पढ़ते हैं ना तो उसके अंदर जो गुणस्थानों का जो काल बताया है या उसमें किस किस तरह से क्या क्या बातें होती हैं तो उस पर से ये नक्की होता है कि ये काल कोई 48 मिनट वाला कोई केवल ज्ञान के लिए पॉसिबल ही नहीं है अंतर मुहूर्त कहेंगे छोटे छोटे अंतर मुहूर्त है हुँ? हुँ? ये चौथी लाइन में हम आए थे, नीचे से दूसरा पैराग्राफ। मुनिराज ने प्रचुर स्व संवेदन होय छे तेने तो अंदर अतीन्द्रिय आनंद ना उभरा आवे छे। वीतराग आनंद अने शांति जेमा अति उग्रपने अनुभव मा आवे तेनू नाम चारित्र छे। तो ये जो उग्रपने अनुभव मा क्यारे आवे, ख्याल में देखो देखो, अभी हम अपनी बात देखो लो ना, रागी द्वेषी जीवों की बात कैसी होती है। रात को कुछ कारणवश हम नींद नहीं ले पाए तो दोपहर में नींद लेने को हम सो जाए और हर 5 मिनट 10 मिनट के बाद एक टेलीफोन आ जाए तो आपको कैसा लगेगा, अरे बराबर सोने ही नहीं देते। और मान लो कि आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं करे और 2 घंटा आपको अच्छी नींद मिल जाए तो ये उभरो आवे ने आनंद, क्या कह रहे। तो ये जो उग्रपने अनुभव आवे, कयो वितराग आनंद ने शांति, ये क्यारे आवे के जारे स्वरूप में स्थिरता एटली जोरदार हो त्यारे। हाँ साहब, हाँ जाम ही जाए बस सारू। एनु नाम चारित्र छे। चारित्र मां तो घणी व्यक्तता नो अंश भार पर्याय मां प्रकट थाय छे, छता ते पूर्ण नथी, पूर्ण तो केवड़ी ने थाय छे। भाई देवगुरु शास्त्र नी बाह्य श्रद्धा ए परमार्थे समकित नथी। क्या कहते, निश्चय से सही सही देखा जाए तो, क्यों ये जो देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा जो है वह राग सहित की श्रद्धा है। अने बाहर ना व्रत तप भक्ति एकाई चारित्र नथी, व्रत भक्ति ना परिणाम तो राग छे, आश्रव छे। आई कहे छे जेमनु जे तेज राग द्वेष रहित थई गयु छे। जो आ चारित्र नी व्याख्या छे, चौथा मा स्वानुभव थया थवा छता राग द्वेष हता, संयम न हतो। आई तो चैतन्य तेज राग द्वेष रहित थयु छे एवा चारित्र नी वात छे। आहा, श्लोक मा चैतन्य तेज राग द्वेष रहित थई गयु छे एवा चारित्र नी वात। अरे फिर से वही पढ़ा, श्लोक मा केटली गंभीरता छे भाई। सातमे गुणस्थाने चैतन्य नु तेज घणु वधी गयु छे तेने मुनि कहिए। मुनिपनु कोने केवू भगवान, आहा धन्य ए मुनि दशा, धन्य ए अवतार। समय सार गाथा 5मा श्री कुंदकुंदाचार्य स्वयं कहे छे, आत्मानी शक्ति नु प्रचुर स्व संवेदन ते अमारो निज वैभव छे। आ गई ना बात, प्रचुर स्व संवेदन, वो प्रचुर स्व संवेदन से 3 कषाय चुकड़ी का अभाव सहज रूप से हो जाता है। आहा हा, समुद्र मा जेम भरती आवे तेम मुनिराज ने अंदर अतीन्द्रिय आनंद नी भरती आवे छे। प्रचुर स्व संवेदन ए मुनि नु भावलिंग छे। हवे आवी वात बीजे क्या छे, संप्रदाय ना आग्रह वाला ने कठन पड़े पन मारक तो आवो ज छे भाई। ये बार बार वहां से निकल के आए हैं और वहां की सारी बातें जानते हैं, जिसको हम इंग्लिश में इन्स एंड आउट्स कहते हैं, तो उनको तो याद ही आता है कि भाई ऐसा ऐसा जमा था और यहाँ तो ये ऐसी बात है। तो और फिर वो जाते जाते क्या बोलते हैं, संप्रदाय ना आग्रह वाला ने, यानी जो अपनी बात छोड़ने को तैयार नहीं है, इनको ये बात थोड़ी सी कठिन लगने वाली है। परंतु मारक तो आवोज छे, यानी क्या, असलियत तो यही है, मूल बात तो यही हमें देखने में आ रही है। अंदर अनंत गुणती भरेलो निर्मलानंद चैतन्य बिंब प्रभु भगवान आत्मा छे। आवा आत्मानु भान थईने चारित्र प्रकट थाय तेनी दशा राग द्वेषती रहित होय छे। बारमा देहनी दशा वस्त्र रहित होय छे अने अंदरमा चैतन्यनु तेज राग द्वेष विभाव थी रहित होय छे। पूनमे दरियामा भरती आवे त्यारे दरियो पूरण उछड़े छे, तेम केवल ज्ञानना पूर्ण आनंदनी भरती थी आत्मा उछड़े छे। અહીં હજુ ચારિત્રની વાત છે. તો કહે છે ચૈતન્યનું તેજ રાગ દ્વેષ રહિત થઈને ઘણું જ ખીલી ગયું છે અને જેમાં પ્રચુર આનંદનું વેદન થાય છે તેનું નામ ચારિત્ર છે. લ્યો આવી વાત. વળી વિશેષ કહે છે, જેવો સદા પોતાના ચૈતન્ય ચમત્કાર માત્ર સ્વભાવને સ્પર્શે છે, મુનિરાજને છઠે ગુણસ્થાને જરીક વિકલ્પ આવે પણ તરત જ સાતમે ચડી અંદર આનંદને સ્પર્શે છે. યે ભી તો હમ જાનતે હૈ કે જો ભાવલિંગી મુનિરાજ હોતે હૈ વે છઠે ગુણસ્થાન મેં એક અંતર મુહૂર્ત સે અધિક રહેંગે હી નહીં, ક્યોંકિ એક અંતર મુહૂર્ત સે અધિક કાલ વો રહે તો ઉનકા વહ ગુણસ્થાન છૂટ જાતા હૈ. ક્યા કહે, મુનિરાજ ને છઠે ગુણસ્થાને જરી વિકલ્પ આવે પણ તરત જ સાતમે ચડી અંદર આનંદને સ્પર્શે છે. આહા હા, મુનિરાજ સદા પોતાના ચૈતન્ય ચમત્કાર માત્ર સ્વભાવને સ્પર્શનારા એટલે કે અનુભવનારા છે, વેદનારા છે. ચોથે અને પાંચમે અંદર ઉપયોગ કોઈ 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 વાર જામે, બે દિવસે, પંદર દિવસે, મહિને, બે મહિને જામે પણ દિગંબર ભાવલિંગી સંત મુનિવરને તો વારંવાર શુદ્ધ ઉપયોગ આવી જાય છે. છઠે ગુણસ્થાને પંચમહાવ્રતનો વિકલ્પ આવે એ તો એને બોજો લાગે છે. નિર્મળાનંદનો નાથ સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ છે તેને વ્રતનો વિકલ્પ ઉઠે છે તે બોજો છે. મુનિરાજ તત્કાળ તે બોજાને છોડી પોતાના સ્વભાવને સ્પર્શે છે, અનુભવે છે. છઠેથી સાતમે વારંવાર મુનિરાજ સ્પર્શે છે તેથી અહીં નિત્ય સ્વભાવ સ્પૃશ એમ કહ્યું છે. આ સમયસર તો કેવળ જ્ઞાનનો વિરહ ભૂલાવે એવી અદ્ભુત અલૌકિક ચીજ છે. કહે છે, જેવો ભૂતકાળના તેમજ ભવિષ્યકાળના સમસ્ત કર્મથી રહિત છે, જુઓ આ ચારિત્ર દશા, ભૂતકાળના રાગથી રહિત તે પ્રતિક્રમણ અને ભવિષ્યકાળના રાગથી રહિત તે પ્રત્યાખ્યાન અને વર્તમાન રાગથી રહિત તે આલોચના છે. કહા સે કહા લિયા દેખા, પ્રતિક્રમણ યાની પીછે હટના, કાહે સે પીછે હટના, તો કહેતે ભૂતકાલ કા જો રાગ હતા ઉસસે હટે અને ભવિષ્યકાળના રાગથી હટના હોય પ્રત્યાખ્યાન ત્યાગ હૈ ઓર આલોચના વો તો વર્તમાન કે રાગ સે રહિત હો જાના. ત્રણેય વાત કળશમાં કરી છે ભાઈ. સમસ્ત કર્મથી રહિત એવી દશાનું નામ ચારિત્ર છે બાપા. ચોથા ગુણસ્થાને અને પાંચમે શ્રાવકને તો આર્ત્ર રૌદ્ર ધ્યાન પણ હોય છે. પરને કારણે નહીં પણ એવી અસ્થિરતા તે દશામાં હોય છે. તેઓ ક્યાં વાત કહી, ગૃહસ્થને ચોથે ગુણસ્થાને અને પાંચમે શ્રાવક, ત્યાં ડિફરન્શિયેટ કિયા ને, તે એમને તો આર્ત અને રૌદ્ર ધ્યાન પણ હોય છે. તો છઠે ગુણસ્થાન મેં ક્યાં રહેતા ઓર ક્યાં નિકલ જાતા હૈ? હા સાહબ, અચ્છા અચ્છા, આપકા કહેના હૈ છઠે ગુણસ્થાન મેં રૌદ્ર ધ્યાન નહીં રહેતા ઓર કોણ સા રહેતા હૈ? આર્ત ધ્યાન મેં કોણ કોણ સે આર્ત ધ્યાન રહેંગે? હા, ઇન્હોને શોર્ટ મેં બતાયા, ઉન્હોને બતાયા નિદાન ધ્યાન નહીં હોગા. તો કોણ સા હોગા આપ જાણતી બેન? હા, પીડા ચિંતન, પીડા ચિંતન, બહુ અચ્છા. અનિષ્ટ સંયોગ જ, ઇષ્ટ વિયોગ જ, ઓર પીડા ચિંતન યે હો સકતે હૈ, હોતે હી હૈ સમજ કહો, લેકિન હોતે હૈ કહા ના યહાં. ચોથે ગુણસ્થાને અને પાંચમે શ્રાવકને તો આર્તર ધ્યાન પણ હોય છે, पण हो उते ही है, ऐसा नहीं करना। देखो अरे ऐसी गड़बड़ी हुई थी भाई बोलना नहीं चाहिए लेकिन अभी याद आ गई तो बता ही देता हूँ। मेरी बेटी रीना वो कहीं मंदिर में गई थी तो वहां बात चल रही थी तो पांचवा गुणस्थान ऐसा 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 होता है तो उसमें ये अतिचार लगते हैं तो अतिचार लगते ना अतिचार होते ही है ऐसा सिखाने वाले ने सिखाया। अब कौन था मुझे याद नहीं है तो उसने कहा ऐसा नहीं होता है, ये होते ही है ऐसी बात नहीं, हो सकते हैं और वो उनके बिना भी पांचवा गुणस्थान उस प्रतिमा योग्य हो सकता है। तो उनको थोड़ा सा क्या हो गया, अच्छा नहीं लगा। तो तुम कौन हो, कहाँ आप कभी दिखती नहीं, आज पहली बार आए हैं। तो वो उन्होंने बताया मैं उज्ज्वला की बेटी हूँ, दिनेश भाई की लड़की हूँ। बैठो बैठो, उसको बिठा लिया। तो दूसरे दिन से वो गई नहीं। क्यों बोले झगड़ा जाके करना और हमारा नाम सुनकर और बदनाम क्यों होना, तू जाने दो। तो मैं ये किस पर से याद आया, होते हैं हो सकते हैं वो, ये तो भाई देखो निरतिचार पालन भी हो सकता है कि नहीं, अतिचार लगे तो भाई ठीक है उतना क्षम्य है, अनाचार तो नहीं है ना, ये बात हमें देखनी। तो ये पांचवे गुणस्थान की बात चल रही थी ये बताना ये चाहते परणा कारण नहीं, ये भी जो कोई ध्यान बहन हो रहे हैं ना खोटा वो पर के कारण से नहीं है, पर ये भी अस्थिरता ते दशा मा हो चौथा पांचवा गुणस्थाने हो जो अष्टापद पर्वत प्रति भगवान श्री ऋषभ देव मोक्ष पधारिया तेनी खबर पड़ता भरतनी आंख मा आंसू छलकाया। भरत समकीति छे ज्ञानी छे छता भगवान ना विरह मा ते रड़े छे एम क्या रे भरत क्षेत्रनो चैतन्य सूर्ण अस्त चैतन्य सूर्य अस्त थई गयो भगवान ना विरह पड़िया एम भरत जी रड़े छे। त्यारे इंद्र तेमने समझावे छे के अरे भरत जी आ शू तमे तो आ भवे मोक्ष जशो तमने आ रुदन न सुहाय। भरत कहे छे खबर छे पण अस्थिरतावश राग आवी गयो छे, अमे तो एना ज्ञाता छे करता नथी जुओ। ये जो डायलॉग है ना ये स्वामी जी के स्वयं के होंगे शायद, क्या कहा स्वामी जी को कोई ऐसा विरोध करने को आता है उनके पंथ के पुराने पंथ के, तो क्या कहा यहाँ भरत कहे छे नीचे से चौथी लाइन खबर छे, तो स्वामी जी भी कहते थे खबर छे, लाखों श्लोकों वाचा छे, करोड़ों लाखों नहीं करोड़ों श्लोकों वाचा छे बड़ी खबर छे, ऐसा करके उड़ा देते। तो यहाँ ये जो बात है वो उनकी, उन्होंने कहा भरत जी कहे छे खबर छे, यानी उनका यही कहना है कि ये जो है ये राग अस्थिरतावश ये राग आ रहा है पर हम उनके ज्ञाता है करता नहीं है, जो ज्ञानी ने पर कमजोर भूमिका मार राग थी जतो हो। आपको और कोई ऐसा उदाहरण मालूम है क्या? हाँ क्या नाम है दिव्या बेन, सम्यक दृष्टि को राग हो गया बहुत, नहीं मालूम? हाँ बोलो मंदा। हाँ 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 आपने बताया, आप क्या कह रहे हैं? हाँ अच्छा बहुत अच्छा। हाँ हाँ लेकिन अभी और उससे भी बहुत जबरदस्त उदाहरण तो राम और लक्ष्मण, लक्ष्मण का जब देह विलय होता है तब राम उनको एग्री नहीं करते कि ये मरा है, बिल्कुल नहीं, छः महीना ऐसा उनको साथ लिए घूमते हैं। ये तो बात ऐसी है कि राग आता है किसको कि हम, हाँ हम जो बिल्कुल ऑर्डिनरी लोग हैं वो भी समझ आ रहे इतना नहीं समझता है ऐसा कैसा होगा, हम तो जल्दी उसको निकाल बाहर कर देवे। और ये सम्यक दृष्टि तद्भव मोक्षगामी जीव उनको नहीं समझे। अरे सम्यक दृष्टि तो स्वस्वरूप का श्रद्धान जो है बिल्कुल सॉलिड है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। पर अभी यहाँ अस्थिरता का राग है, यानी स्वरूप में गुप्तता नहीं हो रही है, स्वरूप में लीनता नहीं हो रही है। इस कारण ये कमजोरी के कारण ऐसे भूमिका में राग भी होता है, ये बात बता रहे। देखो देखो कहे जो ज्ञानी ने पन कमजोर भूमिका मा राग थई जतो होई छे, ते राग करे छे ऐसा नहीं लिखा हो, राग थई जतो होई छे थई जाय छे। हम आई मुनिराज ने तो राग रहित चैतन्य तेज प्रकटियों छे, वारंवार आत्मस्पर्श करे छे अने समस्त कर्म थी रहित थया छे एनी वात छे। तेवो तदात्व उद्घात भिन्ना वर्तमान कारणा कर्मोदयती भिन्न छे। जुओ बारमी गाथा में तदात्वे शब्द आयो छे, परिज्ञायमान तदात्वे प्रयोजनवान। क्या कहा? ते काले जाने लो प्रयोजनवान छे एम क्या कहूं छे। ये तदात्वे शब्द है ना, तदात्व उद्यात भिन्ना। ये तदात्व शब्द पहले भी आया था बारहवें में, बारहवें गुण स्थान में, वो बारहवीं गाथा में वो बात यहाँ पर कही है कि ते काले जन जाने लो प्रयोजनवान छे एम क्या कहूं छे। मतलब के सम्यक दृष्टि ने ज्ञान दर्शन निर्मल थया छे, पण हजू पर्याय मां चारित्रणी अशुद्धता छे, ते काले जानेली प्रयोजनवान छे। ते अशुद्धता जे छे ने, ते अशुद्धता ते काले एटले जे काले जेवो राग आवे छे ते काले जानेलो प्रयोजनवान छे, एटले अशुद्धता जानेली प्रयोजनवान छे। तेने समय समय शुद्धता वधे छे, अशुद्धता घटे छे, ते काले जानेल प्रयोजनवान छे एम त्या वात छे। आई तदात्व एटले वर्तमान जे उदय आवे छे तेना थी ए भिन्न थयो छे एम वात छे। भाई आ तो अध्यात्मनु शास्त्र बहु गंभीर। मुनिराज ने आनंदना प्रचुर स्वसंवेदन जनित प्रचुर निज वैभव प्रकट थयो छे। भूतकाळना कर्मती तो पाछा वळी गया छे ते प्रतिक्रमण। क्या कहा? भूतकाळना कर्म थी आ कया कर्म? आठ कर्म माथी कयो कर्म बेन? इधर लिखा ना भूतकाळना कर्म थी, जया बेन आप बताएंगे। हाँ ये राग देश हुए थे ना। अरे तुमको मालूम नहीं हमारा शिवाजी था जब ऐसा था ना वैसा था, हम शिवाजी के वो है, ये भूतकाण है, वो प्रतिक्रमण नहीं करे उसमें चिटक रहे, ख्याल में है? और अभी हमारा 21वीं सदी में हमारा भारत ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है, ये सब प्रत्याख्यान का 12 बजा दिया है। क्या कह रहे? देखो भूतकाळना कर्म थी एटले राग द्वेष रूपी भाव कर्म छे ते एना थी पाछा वळी गया छे ते प्रतिक्रमण छे। भविष्यना कर्म थी पाछो वळ्यो छे ते प्रत्याख्यान छे। अने वर्तमान कर्मोदय थी भिन्न थया छे ते संवर कहो के आलोचना कहो। इसमें और एक एडिशन कर दिया यानी जब इस स्वरूप में गुप्तता है ना तो संवर चल रहे। आहा हा वर्तमान कर्म उदय में आवे तेना थी ये भिन्न पड़ी गयो छे। प्रभु तारी मोटप ने शू केवू एनो काई पार नथी। अने हीनप तो मात्र जानेली प्रयोजनवान छे आदरेली नहीं, केम के हीनप जाने तो हीनप ने छोड़ी आगळ वधे छे। समझाणो काय? आम समस्त कर्मोती भिन्न एवा तेवो ज्ञानीओ अति प्रबल चारित्रना ज्ञान वैभवना बढ़ती ज्ञाननी संचेतनाने अनुभवे छे। चंचत चित अर्चिमयी अर्चिरमयी के जे ज्ञान चेतना चमकती चैतन्य ज्योतिमय छे અને સ્વરસ અભિષિક્ત ભુવનામ જેને નિજરસથી પોતાના જ્ઞાનરૂપ રસથી સમસ્ત લોકને સિંચ્યો છે. આહા, મુનિરાજ પોતાના સ્વરૂપમાંથી દૃઢ ગાઢ પ્રગાઢ રમણતા કરે, એ બહુત અચ્છી બાત આઈ. ગાઢ બતાયા તા ના આપને, પ્રગાઢ, બહુત અચ્છા, રમણતા, તે ચારિત્ર છે. અને મુનિરાજનો નિજ વૈભવ છે, જોવા નિજ વૈભવ. હજારો શિષ્ય હોય ને બહુ શાસ્ત્રદાન હોય, લાખો માનસે માણસો એને પ્રવચનમાં સાંભળતા હોય, તે નિજ વૈભવ નથી. એ તો બધી બહારની ચીજ પ્રભુ. આ તો અંતરંગ સ્વસ્વરૂપમાં અતિ ગાઢ લીનતા રમણતા કરે, તે ચારિત્ર અને તે નિજ વૈભવ એમ વાત છે. આહા હા, આવા ચારિત્રના વૈભવના બળથી જ્ઞાની જ્ઞાનની સંચેતનાને અનુભવે છે. આહા હા, ચારિત્રમાં અંદર એકાગ્રતા એવી દૃઢ વર્તે છે કે એકલો જ્ઞાન ચેતનાના સંવેદનમાં તે પડ્યો છે. અહો, આવી અલૌકિક મુનિદશા છે ભાઈ. અત્યારે તો બધો ફેરફાર થઈ ગયો, બહારના દ્રવ્યલિંગના એ ઠેકાના ન મળ્યા ભાઈ. આ તને માઠું લગાડવાની વાત નથી, માઠું એને ખોટું, અને આપકા દિલ દુખાને કા હમારા કોઈ મકસદ નહીં હૈ. આ તો તારા હિતની વાત છે પ્રભુ. અંદર આનંદનો નાથ, સચ્ચિદાનંદનો નાથ પ્રભુ છે, તેને ઢંડોળીને એમાં જ લીન પ્રલીન થઈ પ્રચુર અતિન્દ્રિય આનંદને વેદે છે, એનું નામ ચારિત્ર છે. સમજાણું કાંઈ, જ્ઞાની જ્ઞાનની સંચેતનાને વેદે છે. કેવી છે તે જ્ઞાન સંચેતના? તો કહે છે કે ચમકતી ચૈતન્ય જ્યોતિમય છે. આહા હા, જેની જ્ઞાન પર્યાયમાં ચૈતન્યનો ચમકતો પ્રકાશ પકડી ગયો છે. ચોથા ગુણસ્થાને ચૈતન્યનો અલ્પ પ્રકાશ છે, પણ ચારિત્રમાં ગાઢ અંતરલીનતા થતા ચૈતન્યના તેજની ભારે ચમક અંદર પ્રકટ થાય છે. આહા હા, આ તો અંતરદશાનો અંતરદશાને જડ ભાષામાં કેમ કેવી ભાષા ઓછી પડે છે ભાઈ. ચમકતી ચૈતન્ય જ્યોતિમય છે એમ કહ્યું, એમાં સમજાય એટલું સમજો બાપુ. વળી કેવી છે તે જ્ઞાન ચેતના? તો કહે છે જેને નિજરસથી સમસ્ત લોકને સિંચ્યો છે. એટલે શું કે એની જ્ઞાનની દશા પ્રગટે, તેમાં લોકાલોકનું જ્ઞાન થઈ જાય છે. નિજરસથી જ્ઞાનરસથી સમસ્ત સિમસ્ત થયું છે, તે સમસ્ત લોકને સિંચ્યો, યહાં સંચો થઈ ગયો છે, સિંચ્યો છે. એટલે જ્ઞાનમાં છ દ્રવ્યમય લોક આખો જાણી લીધો છે. સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર ત્રણે થઈને મોક્ષ છે. એકલા સમ્યક દર્શનથી મુક્તિ નથી એમ અહીં કહેવું છે. જ્ઞાન સંચેતનાનું અતિ ઉગ્ર વેદન થતા જ્ઞાનની પૂરણ દશા પ્રકટ થઈ જાય છે, અને એ પૂરણ જ્ઞાન પ્રકટતા તેમાં લોકાલોક જણાઈ જાય છે. ક્યાં કહા, એ જ્ઞાન સંચેતનાનું એને અપને સ્વરૂપ મેં જો એકાગ્રતા લીનતા જો હૈ, ઉસકા ઉગ્ર વેદન યાને ઉસમે અધિક પ્રગાઢતા હો જાને તે જ્ઞાનની, અને કેવળ જ્ઞાન પૂર્ણ પ્રકટ, કેવળ જ્ઞાન પ્રકટ થાય છે, અને તે પૂર્ણ જ્ઞાન પ્રકટતા તેમાં, એટલે કેવળ જ્ઞાન થતા તેમાં લોકાલોક જણાઈ જાય છે. આવી વાત છે. બાકી કી બાત અગે હમ કર લેંગે. ઓ ચાવની કે જ્ઞાન તય સૂજે લો કાલો સોવાણી મસ્તકણમો સદા દેતો.